आज बहुत धन्यवाद है कि आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो पहले भजन गा लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मैं आज दशम स्कंध से वह प्रसंग आप लोगों को कुछ सुना रहा हूं, जो जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी कृष्ण की लीला को देख करके मुग्ध हो गए। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और शंकर को कहा जाता है। ब्रह्मा से जगत की सृष्टि होती है, विष्णु से उनका पालन होता है जगत का, वो पालन पोषण करते हैं, और शंकर जी इस सारे जगत को ध्वंस कर देते हैं। बीच में विष्णु है, विष्णु के एक तरफ में ब्रह्मा जी, एक तरफ में शंकर जी हैं। दोनों को अपनी अपनी शक्ति देते रहते हैं, उन्हीं की शक्ति से जगत का संचालन करते हैं और उन्हीं की शक्ति से ये संहार शंकर जी करते हैं। मूल दोनों के ये विष्णु हैं। ये विष्णु भी को मन लगा करके सुनिए। ये विष्णु, हाँ जी, कृष्ण की कोई लीला देखना चाहते थे। पहले आप लोगों को ये बतला दूं, भगवान 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है, एक है, 10, 20 नहीं है। तो हमारे यहाँ इतने देखे जाते हैं, इतने भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी, कार्तिकीय जी, इधर में इंद्र है, वरुण है, यम है, इतने, और उधर में राम, कृष्ण, नृसिंह, लाखों, 33 कोटि देवता देवी, इतने क्यों? ये भगवान एक ही हैं, तब याने क्यों क्रिश्चियन लोग कहते हैं या मुसलमान लोग कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत देवताओं देवियों के उपासक हो और हम लोग एक के हैं, इसका कारण क्यों? इसलिए कि हमारा धर्म जो है सनातन धर्म बड़ा उदार है, बहुत उदार। इसमें श्रेणियां हैं, इसमें एक से लेकर के हजारों क्लास हैं, सब एमए बीए या पीएचडी वाले एक ही नहीं, हमारे यहाँ श्रेणी है, बहुत तरह की श्रेणियां हैं। कोई तामसिक है, कोई राजसिक है, कोई सात्विक है, कोई मिश्र है, कोई निर्गुण है, सब एक नहीं है, तरह तरह के लोगों की प्रवृत्ति है। इसलिए उनको कख गग से पढ़ाने के लिए और आ से पढ़ाने के लिए और फिर एमए पीएचडी पढ़ाने के लिए बहुत से क्लास होते हैं। एक क्लास होने से कोई नहीं पढ़ सकता है ना? हमारे ही नहीं है, ये तलवार के बल पर हम कहते हैं कि यही मानो और नहीं तो तुझे उड़ा देंगे। हम संशय कर सकते हैं, डाउट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारे यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ तरह तरह की श्रेणियां हैं प्रारंभ से। इसलिए संसार में रह करके जो लोग संसारी कामना करते हैं, ये शरीर को ही मैंने, मैं ये हूं, ये रखते हैं, ये मैं शरीर हूं और इसमें हमको पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, हम स्वच्छंद रूप से सुख से जी सकें, हे प्रभु हमको दीजिए। तीन के लिए गणेश जी को दे दिया गया, तुम गणेश जी की उपासना करो। कोई और भी इससे अधिक चाहता है तो उसके लिए शंकर जी की उपासना, कोई शक्ति की उपासना करते हैं, इनसे भी ऊपर उड़ जाए तो वो हमारे यहां नृसिंह जी की उपासना है, उससे भी ऊपर उठे श्री रामचंद्र जी की उपासना, उससे भी कोई ऊपर उठे तो केवल प्रेम देने वाले, प्रेम से जिनकी उपासना होती है वो कृष्ण। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया गणेश, शंकर जी, दुर्गा जी, ये सब जगत की कामनाओं को पूर्ण करने वाले बड़े सहज चुटकी बजाते हैं। वो ये नहीं देखेंगे तुम्हारा कल्याण होगा या कल्याण, तुम जो चाहो दे देंगे, पुत्र चाहिए दे दिया, और 5 वर्ष में मर गया इसके लिए वो गारंटी नहीं देंगे ये सुख देगा कि क्या देगा। उसी तरह से शंकर जी को देखिए, सिर पर गंगा, गले में क्या मुंडमाला, शरीर पर क्या भस्म, वो भी कहां का मुर्दा घाटी का, श्मशान भूमि की का भस्म लगाए रखते हैं। शरीर में सांप, पैरों में भी बाजूबंद अंगद, गले में हार, यहां पर भी सांप ऐसे ही सब किए हैं। क्यों? गणेश जी जो देते हैं संसार के ये वैभव इत्यादि, शंकर जी कहते हैं कि देखो उसमें मत रमो, ये तो केवल हड्डियां हैं जिसको गले में मैंने लगा रखा, अंत में मरने के बाद में भस्म हो जाएगा शरीर, इसलिए ये सब चीजें ऐसे ही हैं। अरे सांप का विष है, तुम लोग नहीं हजम कर सकते, मैं नीलकंठ हूं, उस विष को मैं हजम कर सकता हूं, तुम लोग नहीं। और इधर में गंगा जी भगवान के चरण की धोवन है, चरण अमृत उसको रख रखा है, सुशीतल चंद्र को भी रख रखा है, दोनों चीजें इनमें, शुभ और अशुभ देखने वाली सभी चीजें इनमें सामंजस्य है। ये भगवान की सेवा करने के लिए ये शंकर गणेश जी के पिताजी क्या करते हैं, ये शंकर जी ही हनुमान बने हुए हैं, हनुमान दूसरे नहीं है, ये मत समझिएगा। हनुमान जी कौन है? किसकी सेवा करने के लिए? अपने प्रभु की सेवा करने के लिए, जिनका नाम जपते हैं राम 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 राम। इसलिए शंकर जी के भी आराध्य ये राम है, राम कश ये हनुमान जी की सेवा करते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् भागवत में और गीता में गणेश जी का नाम नहीं आया, किस लिए? संसारिक चीजों को देखते हैं हम, जो मांगते हैं वो दे देते हैं, ये विचार नहीं करते हैं कि ये शरीर नित्य है या नहीं है, जो तुम मांगो दे देंगे, सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, समस्त प्रकार के विघ्नों को शारीरिक और मानसिक ये सबको दूर कर देने वाले होते हैं। उनके पिताजी, उनकी मैया उमा जी राम का निरंतर भजन करते हैं, और उन्हीं को जबकि कृष्ण का भजन करना होता है तो गोपी बन करके, गोपीश्वर बन करके मथुरा में आ जाते हैं, हनुमान रूप से और शंकर रूप से नहीं होगा, जहां भगवान का रूप होगा, आविर्भाव होगा, और शंकर जी जरूर जाएंगे, ब्रह्मा जी जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे, सारे देवता लोग जाएंगे। इसलिए सबके आराध्य कौन हुए? ये कृष्ण राधा। इस चीज को समझना चाहिए। व्यास जी ने वेद का 4 विभाग किया, ऋग साम यजु अथर्व, क्योंकि हमारी मेमोरी वैसी नहीं थी उस समय तक, द्वापर युग के अंत तक हमारी ऐसी हो गई जो ब्रह्मचर्य नहीं रख सके, शुद्ध कोई चीज भी मिलना मुश्किल हो गया, हमारी स्मरण शक्ति क्रमशः नष्ट हो गई। पहले एक आदमी जितने भी शास्त्र हैं उसको मुखस्त रखता था, वो संभव नहीं हुआ। हम लोगों के समय में भी 80 वर्ष 85 वर्ष के हम वृद्धों को देखा बचपन में, अब हमारी उम्र तो 80 वर्ष के होने जा रही, उस समय कैसी मेमोरी थी, गीता तुलसी की रामायण महाभारत इत्यादि सभी उनको याद है। और आज आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या ऊर्ध्वमंथी है। क्या क्या कहा जरा फिर से बोलिए तो। ऊर्ध्वमंथी स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग लिखे ऊ लिख दिया है इसके बाद में, और ध्व कैसे लिखे जाएगा फिर से जरा बतला दीजिए तो। और इसके बाद में वो लिख लेंगे डायरी में, याद नहीं रहेगा, ऐसी स्मरण शक्ति हमारी हो गई है। तो गीता भागवत इत्यादि वेदों को कैसे याद रख सकते हैं, इसलिए व्यास जी ने उसका वेद का विभाग करके एक एक अपने शिष्यों को पढ़ाया, जो कि इतना वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब तक गीता का एक श्लोक भी मुखस्त करना बड़ा भारी कठिन है। किसी पड़ोस का आदमी का नाम याद नहीं रहता, एक ही फ्लैट में रहते हैं, कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए उन्होंने चार विभाग किए। इसके बाद में उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, जो कि समझना बड़ा भारी कठिन है। उसको समझाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना की, 36 पुराण लिखे, 18 मूल पुराण, 18 × 36 उसका शाखा पुराण और उप पुराण, 54 पुराण लिखे, जिसमें 18 प्रधान है। इसके बाद उन्होंने महाभारत लिखा, जिसमें स्त्रियों का, शूद्रों का, अंतजों का, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबका अधिकार है, वेदों में सबका अधिकार नहीं, क्योंकि उच्चारण ही नहीं कर सकते शुद्ध रूप में, समझना तो बहुत कठिन है। महाभारत भी लिख लिया और जितने धर्म कर्म है सबका उपदेश दिया, तरह तरह के देवी देवताओं की उपासना की बात भी लिखी, राम और कृष्ण की भी हरिवंश में, महाभारत में या रामायण में वाल्मीकि जी ने ये सब किया, किंतु व्यास जी प्रसन्न नहीं थे, उनका चित्त ही नहीं प्रसन्न था। नारद जी घूमते घामते आए, बेटा तुम्हारे चित्त प्रसन्न नहीं देखते हैं, तुम जगत का उपदेश देने वाला, धर्म कर्म का मूल बतलाने वाला, तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं, खेद युक्त है, क्यों? गुरु जी तो ये तो मैं नहीं कर सकता, वैद्य ही रोग का निर्णय कर सकते हैं, आप परमार्थ राज्य के वैद्य हैं, इसलिए आप हमारा रोग निर्णय कीजिए आप। हाँ हाँ मैं जानता हूं ये क्यों नहीं प्रसन्न है, सब कुछ लिखा, किंतु गड़बड़ी तुमने ये किया, तुमने ये ठीक ठीक नहीं लिखा, जो भगवान एक है वो कौन है ये नहीं लिखा, कंफ्यूजन में डाल रखा। गणेश जी का भजन करना चाहिए, हनुमान जी का करना चाहिए, शंकर जी का करना चाहिए, या इंद्र की उपासना की, सूर्य की गणेश की शक्ति की, सौर की विष्णु की, तुमने कोई निर्णय ठीक नहीं किया। अलग अलग पुराणों में अलग अलग ऐसी महिमा बतलाई, जो शंकर जी आदि हैं, शिवलिंग आदि है, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि पैदा हो गए। शक्ति चल ले लिया तो शक्ति जी भी शक्ति से ही, ये शंकर जी भी शक्ति से ही निकले। गणेश जी की महिमा लिखा तो वैसे ही लिखा। इसमें आदमी वैसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे एक चौराहे पर पहुंचकर अब किधर जाना है उसको ठीक नहीं, बस वहीं पर खड़ा हो जाता है, पूछने वाला कोई मिले, यदि जानने वाला है वो तो बतला देगा, नहीं तो वहीं पर खड़ा रहेगा, भाई किधर जाए। ऐसे आपने स्थिति की, आपने राम की भी गाथा लिखी, महाभारत में कृष्णचंद्र जी के बाद जन्म इत्यादि बतलाया, वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में सब तत्वों का निरूपण किया, किंतु आपने वेदों का विभाग भी किया तो ये क्यों ने लिखा कुछ? आप देखिए परम तत्व क्या है, तो मैं कैसे समझूं? भक्ति से चित्त को संयम कीजिए, पहले शरणागति हो, किसके प्रति शरणागति हो? शरणागति की शिक्षा देने वाला है कौन? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मामेकं माने क्या? हाथ दिखला करके करें माम, हम कहेंगे अरे भगवान तो निराकार है, भगवान है जगत का, सबका सृष्टि इत्यादि जो जग है जैसा भी है, वो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। कृष्ण का तो रूप है, राम का रूप है, तो ये कौन है? अरे वही जो निराकार था, हमारी प्रार्थना से साकार हो गया। अच्छा, तो उनका रूप नहीं है, वो साकार हो गया। हाँ जी, भक्तों की ऐसी उस ब्रह्म की कृपा है, ये भक्त यदि कह देता है जी भाई आकार ले लो, तो आकार ले लेता है। यह विचार सर्वथा भ्रांत और
गलत
है, ऐसा मत सोचो, नहीं तो वैकुंठ झूठा हो गया, गोलोक झूठा हो जाएगा, एकदम सब कुछ झूठा हो जाएगा। मत समझो उनका आकार नहीं है और फिर पीछे से आकार हुआ। अरे भाई, आकार जो कुछ देखता है उन्हीं से हुआ, तो यदि उन्हीं में ही आकार नहीं है तो ये जगत आएगा कहां से? बेटा बेटी का रूप है, मैया बाप का रूप ही नहीं है, हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो ब्रह्म या भगवान जो रूप ही नहीं, जिसका है रूप नहीं धारण कर सकता, इतनी शक्ति नहीं है, जिसमें करुणा नहीं है, उस ब्रह्म से हमें क्या लेना देना? वो बेकार का ब्रह्म है जो रूप नहीं धारण कर सकता। हम जब खिलाएंगे तो वो खा नहीं सकता, हमसे बातचीत नहीं कर सकता है, जब हमसे प्रेम नहीं कर सकता, हम पर कृपा नहीं कर सकता, तो उस ब्रह्म की और भगवान की कोई भी जरूरत नहीं है। निर्गुण है, उसमें दया भी नहीं है। व्यास जी ने उन्होंने कहा, जैसे तुमने ऐसा लिखा जे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये लिखा? तो नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? तो ये तो मेरी गलती है, मैंने अनुभूति नहीं की। अच्छा तो ठीक, उनके शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना करो, वो जैसे वैसे ही रियलाइज होंगे, प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे चित्त में, भक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं। भक्त्या माम एकम ग्राह्यम, भक्ति के द्वारा ही एकमात्र ग्रहणीय, और किसी चीज के नहीं द्वारा। भक्ति माने प्रेम, प्रेम के वशीभूत हो सकते हैं और नहीं। और साथ ही साथ में उन्होंने चित्त को संयम करके भगवान के चरणों में शरणागत हुए, प्रार्थना की, क्या की? प्रचोदयात, गायत्री में है ना, तब सवितुरु वरेण्यम धियो यूनः, हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में प्रकृष्ट रूप से उदयात शब्द है, उसमें उदया प्रकाश है, प्रकाशित हो आप, जैसे हैं वैसे प्रकाशित हो जाए प्रभु कृपा करके। अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच दजदापाशयाम, अपश्यत पुरुषम पूर्ण पुरुष को मैंने देखा। पूर्ण पुरुष को कैसे देखा? ब्रह्म कैसे पूर्ण है? कहते हैं पूर्णम अदह, पूर्णम इदम, पूर्णात पूर्णम उद्दच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कुछ ले लो तो वो पूर्ण रहेगा। कल्पना से कहा गया इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस एनी अमाउंट, और इन्फिनिटिव माइनस इनफिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। असंख्य में से तुम कोई भी एक सब ले लो, असंख्या सभी असंख्य है। तो ये भगवान ऐसे ही पूर्ण है, उनके साथ में उनकी शक्ति को देखा, शक्ति के बिना शक्तिमान भगवान ब्रह्म सब अधूरा है। इसलिए पूर्ण जब कहा गया उनकी शक्ति के साथ, पेड़ जब कहा जाएगा तो उसमें पत्तियां डाल धड़ फल फूल मंजरी सभी रहेंगी, उसके बिना पूर्ण नहीं है। तो उनके लीला के वो देखा, उनके परिकरों को देखा, गोप गोपियों को देखा, उनसे निकलते हुए असंख्य विश्व ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मा शंकर विष्णु सबको देखा उनसे निकलते हुए। और जो जीव उनसे भूल रहे हैं वो चले जा रहे हैं इस लोक में अज्ञान होकर के, और जो लोग उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका भजन करते हैं, वो उनके पास में जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जदा पाश्याम, पीछे में देखा लज्जित होकर के, माया पीछे की तरफ में है, लज्जित है, क्यों? भगवान के प्रिय जीवों को मोहित करके संसार में डाल रही है, इसलिए वो लज्जित है। और क्या देखा? देखा जो जीव जो उनका दास है, उनका अंश है, ममैवांसो जीवलयो के जीव भूतस, अथवा तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ईश्वर का अंश है किंतु है कैसा? अविनाशी। जीव कभी भी भगवान में मिलकर के एक ब्रह्म नहीं होता, मुक्ति के बाद भी नहीं होता। वो लक्ष्मण की भांति, सीता जी की भांति, हनुमान की भांति उनकी नित्य सेवा करता है। शंकर जी उमा जी मुक्त हैं किंतु भगवान में मिलकर के एक नहीं हो गए, कभी हो गए? उमा जी, उमा अपना नाम रूप छोड़ करके और शंकर जी छोड़ करके और उनमें प्रवेश कर करके एक हो गए? कभी नहीं। शंकर जी को कोई बद्ध नहीं कर सकता, लक्ष्मण जी को कोई बद्ध नहीं कर सकता, सीता जी तो उनकी शक्ति है, तो क्या सब मिल करके खिचड़ी होकर के एक हो? खिचड़ी में मित्र चावल डाल पानी अलग रहता है, इसलिए एक नहीं होता। इसलिए मत समझो जो भगवान निराकार है, कभी नहीं निराकार है, वो सब समय में राधा कृष्ण के रूप में, राम सीता के रूप में सब समय साकार है। उनकी चरणों की कनिष्ठ अंगुली की नख की ज्योति ये ब्रह्म है जो निराकार कहलाता है। ज्ञानी लोग इसी का ध्यान करते हैं, भगवान के सी चरणों की कनिष्ठ अंगुली की नख की कांति को, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि 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 असंख्य विश्व ब्रह्मांड की सृजन कर। ब्रह्मा जी से जन नहीं करते बल्कि वो परब्रह्म की इच्छा से प्रकृति सृजन कर। वो तो दो पुर्जों को मिला करके एक मोटर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। इसलिए समस्त ईश्वरों के ईश्वर ये कृष्ण, जो बंसी बजाने वाला, छोटा सा घरों में मक्खन चुराने वाला, गोपियों के साथ में रास नृत्य इत्यादि करने वाला, इसलिए व्यास जी ने लिखा एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। इसलिए समझिए देवता देवी अनेक और सभी ब्रह्म नहीं है, कोई प्रभु है कृष्ण, उनके अंश हैं श्री रामचंद्र जी में, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, अंश माने वही है, उनका अंश भी वही पूर्ण भी है, वो पूर्ण है, वो कोई अंश में किसी अंश में कम नहीं है, वही है। लोगों के कल्याण के लिए वो मर्यादा की स्थापना करने के लिए राम के रूप में आविर्भूत होते हैं, कृष्ण ही, कभी नृसिंह देव के रूप में, कभी बराह के रूप में, ये सब, और शंकर ब्रह्मा इत्यादि जो है इनके जगत के आधिकारिक देवता विशेष, उनकी विभूतियां हैं, गीता में बतलाया गया ना, विभूतियां हैं, भगवान नहीं। अरे देखो जी, गणेश जी जो हमारे जगत में मान्य है सबके, वो मान्य हुए कैसे? देवताओं में चल रहा था बात, देवताओं में सबसे पूज्य कौन है? ब्रह्मा जी आज से जो पृथ्वी के चक्कर लगा करके सबसे पहले आ जाएगा वही सबसे पूज्य होगा। सब लोग अपने अपने वाहनों पर चढ़ करके पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए चले। गणेश जी बड़े दुखी रहे जे हमारा चूहा तो इतना तेज दौड़ नहीं सकेगा और मैं इतना भारी लंबोदर, मैं क्या करूं, बड़े दुखी थे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा जी भाई क्यों दुखी? दुखी इसलिए कि पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और देवताओं का पूज्य होगा, मैं तो सबसे गया बिता सबसे पिछले नंबर पर आऊंगा, मेरी तो कोई पूजा करेगा नहीं। अच्छा एक बात करो, राम नाम लिख करके उसको परिक्रमा 3 बार कराओ। बस उन्होंने राम नाम लिख दिया और उसकी परिक्रमा कर दिया तो वो देवताओं के सबसे बड़े पूज्य बने। जहां ब्रह्मा शंकर जी सब निर्णायक थे, उन्होंने कहा जी ये गणेश सबका पूज्य होगा। क्यों? अरे राम के अंदर में, राम नाम के अंतर्गत में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड, कोटि कोटि पृथ्वी उसके अंदर में, इसकी तो परिक्रमा हो गई, इसलिए, और इसने 3 परिक्रमा की है इसलिए पूज्य है। इसलिए समझिए एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। उनका आकार है किंतु वी कैन नॉट डिफाइन कैसे आकार है। एक उदाहरण देकर के बतलाऊं, आम के पेड़ से आम का फल होता है ना, आम के बीज से आम का पेड़ होता है, कटहल के बीज से कटहल होगा। जीरो नाम का कोई चीज हो उसको लगाओ तो उसे कोई पेड़ होगा, जो कोई है ही नहीं। जिस चीज में जिस चीज की पोटेंशियल है उसी से उस चीज का फल होगा। तो ये ब्रह्म में असंख्य, कृष्ण में असंख्य ये रूप हैं, इसलिए असंख्य ये चीजें निकलती हैं। अन्यथा उनसे रूप ही नहीं है तो ये आएगा कहां से? देखिए बाइबल में लिखा, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। माने क्या? गॉड ने अपने इमेज, अपने रूप के समान, ही हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। जब उनका रूप ही नहीं है मनुष्य को बनाया, तो जब उनका रूप ही नहीं है तो ये रूप कहां से बनाया? आफ्टर हिज ओन इमेज, जैसा उनका रूप है ऐसा बनाया मनुष्य को। हमारा कुरान भी ऐसा ही कहता है, इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही, मैन माने मेरा जैसा, खुदा जी कहते खुदा तल्ला कर रहे हैं, हमारा जैसा रूप है अपने रूप के अनुसार में मैंने मनुष्यों को बनाया। सत्यव समम अग्रासीत, हमारा जैसा रूप है मैंने वैसा ही जगत को बनाया, हमारा वेद भी वैसे कहता है। इसलिए यदि कोई रूप नहीं भगवान का मानता है खुदा का, तो वो बाइबल को काट दे, वो लाई काट नहीं सकते, कुरान से नहीं तो काट दे, नहीं काट सकते। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जिस शास्त्र ने जिसमें कि भगवान का रूप नहीं है। जरूर रूप है, शास्त्र में कहां कहां कितना कहा, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुना कामान विदधाति, एक होकर कि सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है, वह एक ही है। एको बहुश्याम, एक होकर के भी बहुत रूपों में प्रकटित होता है, इसलिए एक ही के हम उपासक हैं और सब उनके परिवार हैं। पति पति है तो ठीक है, दूसरा पति नहीं, एक ही पति है, किंतु बेटे भी तो उसी के हैं ना, नातिनी है, बहुएं हैं और सब लोग हैं, घर में परिवार है, किंतु एक ही है मालिक। ऐसे ही कृष्ण स्वयं ब्रह्म है, इस चीज को समझ। ब्रह्मा जी एक समय ब्रज में पधारे, उन्होंने देखा अघासुर कृष्ण को निगलने के लिए आकाश पाताल में अपने जबड़ों को रख रखा नीचे, और अपनी लाल सी जीव गलीचे जैसा बिछा दिया है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गोचारण करते हुए आ रहे हैं, बछड़ों के साथ में। कृष्ण जानबूझ करके कुछ पीछे रह गए, बछड़े और सखा लोग आगे बढ़ गए। देखा जी ये क्या, आज तो हम पर्वत देख रहे हैं, इसकी कंदराएं बड़ी गंभीर हैं, इसमें कुछ गंध आ रही है, शायद हो सकता है कंदरे में कुछ गंध आ रही हो, ये तो सांप जैसा लगता है, किंतु सांप तो इतना बड़ा हो नहीं सकता, जो हो हमारा कन्हैया तो है, कन्हैया आएगा देख लेगा, कोई जरूरत नहीं है घबराने की, बस सभी उसमें प्रवेश करने लगे। वो अघासुर कंस का मित्र, कंस को मारने के लिए वहां पर है, कृष्ण को उसने सोचा जी अभी कृष्ण तो आया नहीं, बछड़े और सखा लोग तो आ गए, उसके अंदर पेट में चले गए, किंतु अपना जबड़ा मुख उसने बंद नहीं किया। कृष्ण अरे देखो देखो तो ये कैसे हुआ, उसमें प्रवेश कर गए, हाय हाय हाय, मनुष्य की लीला जैसे होती है वैसे करने लगे। कहिए हमारे जब बछड़े भी चले गए, हमारे सखा लोग चले गए, तब हमको तो जाना ही पड़ेगा। बस ज्यों ही उन्होंने प्रवेश किया, उसने अपना मुख बंद कर दिया। बछड़े और ग्वाल बाल तो उसके बीच से उसके भीतर में पहुंचते ही एकदम मर गए, खत्म, प्राण नहीं रहा। कृष्ण ने क्या किया, जब उसने मुख बंद कर दिया तो गले में ठीक एकदम ऐसी जगह में अटके जो सांस बाहर न ले सके और नीचे न ले जा सके, और आग की पिंड की भांति इतने प्रतप से भी प्रतप बड़े जलने लगे, अब उसको सह नहीं सका, निकल भी नहीं सका, भीतर भी नहीं ले जा सका, श्वास भी नहीं ले सका, आंखें गोल गोल लाल लाल निकल आई, और ब्रह्मांड यहां से तालु उसका फट गया, और उसे उसका प्राण निकल करके आत्मा निकली। कृष्ण तभी पेट में है अगासुर के, अभी निकले नहीं है, वो आकाश में वो तेज मड़राती रही। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण उसके सिर को चीर कर अपने सखाओं के साथ में समस्त लोगों को लेकर के उनके तरफ में अपनी संजीवनी दृष्टि से देखा और सभी लोग जीवित हो गए और निकल करके बाहर आए। जब कृष्ण बाहर आए तो उनके चरणों में वो प्रवेश कर गई ज्योति। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये असुर और उसकी ज्योति घूम रही थी और उनके चरणों में समा गई, ये तो मालूम होता है ये परम ब्रह्म है, भगवान ही स्वयं है ये, तो क्यों नहीं इनकी एक दो लीला और देखूं। तो लीला देखने के लिए क्या किया, अच्छा इसके बछड़ों को और सखाओं को जरा चोरी करके कहीं रख दूं, देखते ही क्या करता है। यदि प्रार्थना कर जे प्रभु आपकी लीला देखना चाहता हूं तो कोई बात थी नहीं। उन्होंने अपनी बुद्धि को लगाया और सोचा ये छोटा सा ग्वारिया बच्चा है, दूसरों का जूठा खाता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे इसके बाद में बच्चे सब भूखे हो गए थे, 12 बज गया था, कुछ खाना आज नहीं खाया, इसलिए उनके मुख से निकल करके बच्चों को लेकर के भांडी वन में पहुंचे और वहां पर मंडली बनाई, एक मंडली 2, 3, 4, 5, 6, 7 हजारों लाखों सखा बछड़ों को छोड़ दिया और अपने खाने बैठ गए, भोजन करने लगे। प्रत्येक बच्चा जो सामने है वो भी देख रहा है, कृष्ण से बातचीत कर रहा है, जो साइड में है वो भी देख रहा है, जो एक फरलांग दूर है वो भी देख रहा है मैं कृष्ण से ही बात कर, जो पीछे वो भी देख रहा है कृष्ण से, साथ में हंसी करता रहा, उनके मुख से ले रहा है खा रहा है, सभी ऐसी लीला उन्होंने अद्भुत की और इसी में मत हो गए। इतने में गायें चरती 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 या बछड़े चरते चरते कहीं दूसरी जगह चले गए, उन सबको पकड़ करके उन्होंने एक कंदरे में बंद कर दिया। सखालों देखे बछड़े कहां गए, कृष्ण से उन लोगों ने नहीं पूछा, उनको खोजने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण ने कहा जो तुम ठहरो मैं भी जा रहा हूं, मैं बंसी बजाऊंगा सब आ जाएंगे, किधर गए हैं, तो माने ने वो भी चले गए, उन्होंने उसको भी उठाकर लेकर के बंद कर दिया उसी कंदरे में। कृष्ण फिर लौट करके आए, ये बछड़ी कहां गए और हमारे सखा लोग भी इनको छोड़ करके मैं गया था खोजने के लिए, वो भी नहीं है, क्या करूं, इधर उधर देख रहे हैं। इतने में उन्होंने देखा जाए ये ब्रह्मा का कार्य है, ये चोरी करके रखा, बस जितने बछड़े थे जितने बाल गोपाल थे और बछड़े सभी का रूप धारण कर लिया और उन्हीं जैसा बोलना चालना, उन्हीं का स्वरूप उन्हीं का स्वभाव, जो कोई मीठा बोलता है कोई मोटा बोलता है, कोई हंसता है कोई चंट है कोई कुछ है, उनकी बांसुरी भी बन गए, उनके सिंगा भी बन गए, उनकी लठिया बन गए, उनके कंबल बन गए, उनके कपड़े बन गए, सभी कुछ वही बन गए। और ब्रह्मा चला गया, चले गए अपने ब्रह्मलोक में। एक वर्ष पूरा हो गया और ये प्रतिदिन बच्चों के साथ में जो बन गए थे खुद बच्चों के साथ में ब्रज में जाते और उनकी मैया समझ नहीं पाती, उनके पिता नहीं समझ पाते, कोई नहीं समझ पाता। उस दिन बलदेव नहीं गए थे, वो भी नहीं समझ पाए कुछ। एक वर्ष तक लीला चलती रही। अंतिम दिन में एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद में कृष्ण बलदेव जी गोचारण कर रहे थे मधुबन में और पासी में गिरिराज गोवर्धन, वहां पर गायें चर रही थी, उनके पिता गोपों के चरा रहे और यहाँ पर सखा लोग बछड़ों को चरा रहे। गायों ने देखा वहीं से अपने बछड़ों को, एक वर्ष पुराने नए बछड़े उनके पास थे, उनका दूध देना बंद करके एक वर्ष वाले पुराने बछड़ों को दे करके ड्रम भाती हुई दौड़ी वहीं से। समझिए, नए बछड़ों को गाय या माताएं अपने नए बच्चों को पहले देती हैं दूध और प्यार करती हैं। इन्होंने नए बछड़ों को छोड़ दिया और वहां से 1.5 मील दूर मधुबन में वो सब दौड़ी और इनके पिताजी जो ग्वालों के थे उन्होंने लठियों से उनको रोकना चाहा किंतु रुकी नहीं, वो दौड़ती हुई कूदती हुई एकदम अपने बछड़ों के पास में पहुंच गई पुराने और स्तन से दूध देने लगी और उनको प्यार करने लगी। उनके जो पिताजी थे बच्चों के, बड़े बिगड़े, इन बच्चों ने ये गड़बड़ करके सिंगा बजाया, बेनू बजाया, गाय उधर देखी और बच्चों की तरफ में लपकी और बहुत चेष्टा करने पर नहीं मानी, लाठी से मारना चाहा तभी नहीं मानी, इसलिए उनको क्रोध हो गया। कहा आज बच्चों को जाकर के एक एक थप्पड़ देंगे, कान मलेंगे, जैसा ना गलती करें। जब यहाँ आए बच्चों के पास में तो देख करके आंखों से आंसू गिरने लगे और अपने बच्चों को कर लिया ऐसा। बलदेव जी ने देखा जी ऐसा क्यों क्यों अपने नए बच्चों को छोड़ करके पुराने को ये कर रही हैं, और गाय भी ऐसे और उनके पिताजी भी ऐसे। बलदेव जी ने एक और चीज देखा, जब कृष्ण शाम को गोचारण करके जाते अपने सखाओं के साथ में, पहले एक वर्ष पहले, उस समय क्या होता है, उनकी माताएं पहले कृष्ण को गोदी में लेकर के कृष्ण को प्यार करती थी, कृष्ण को अपने बेटे से अधिक मानती थी, और आजकल कुछ हो गया नया, क्या वो कृष्ण सबके बच्चे हो गए हैं ना, इसलिए अपने अपने बच्चों को कृष्ण के बराबर ही स्नेह करती हैं। बलदेव जी ने कहा जी ऐसा क्यों हुआ, पहले गाय कृष्ण को दूध देती थी, कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी, अब उन बच्चों को अपना कृष्ण के समान ही प्यार करने लगी, ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ? कृष्ण को अधिक प्यार करना चाहिए, अब तक भूतों का तो ऐसा हो नहीं सकता है, ब्रह्मा जी की ये माया हो नहीं सकती, देवताओं की माया हो नहीं सकती, ये किसकी माया है? थोड़ी देर में देखा अरे ये तो हमारे प्रभु कृष्ण की ही माया है, ये तो जितने बछड़े हैं जितने सखा हैं ये तो कृष्ण बने हैं, उनकी लठिया भी ये सब कुछ तो ये कृष्ण ही बने हैं। ऐसा समझते ही कृष्ण देखा अब तो लीला गड़बड़ हो जाएगी, ब्रह्मा जी को पकड़ करके लाए। ब्रह्मा जी आ देखा जैसे देखे तो वो बछड़े और सखा वहां उस कंदरे में है या नहीं, देखा तो वहां पर भी है यहां पर भी है, कैसे ये हो रहा है? फिर देखा अरे जितने बच्चे और बछड़े और बच्चे हैं ये सब चतुर्भुज रूप हो गए, और देखा जी असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड के सभी लोग, ब्रह्मा से लेकर के मरुदगण तक, देवता लोग, शंकर, सभी लोग उनको स्तुति कर रहे हैं, तो इतने कृष्ण कैसे हो गए? और ये बछड़े थे ये सब कृष्ण बने हुए क्या? देख करके दंग रह गए, बस प्रणाम किया भूमिष्ठ होकर। नौ मिद्धते अब्र पपुषे तड़ी दम्बराय गुंजावतंस परिपच्छल सन्मुखाय वन्य सजे कमल बेत्र वेशानु वेनु लक्ष्मास्ये मृदुपदे पशुपाम बजाय। स्तुति करने लगे, कृष्ण ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, एक सखा के ऊपर में अपना हाथ रख दिया कंधे पर और कमल नचाते हुए, और बच्चे करे ये चौमा कहां से आया, चौमा माने चार मुख वाला, ये कौन है? ये ब्रह्मा की स्थिति, ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण था, कृष्ण ने देखा ब्रज में सारी गोपियां चाहती हैं कि हमारे बेटे हों, जो प्रौढ़ हैं, ये कृष्ण ही हमारा बेटा होता तो उनके मन को तो रखना है, मनोरथ को रक्षा करना है, और यहाँ पर जितनी गायें वो चाहती हैं कि हमारे बेटे हो कृष्ण, तो हमको बछड़ा भी होना पड़ेगा। अब ब्रज में जितनी कुमारियां लड़कियां हैं वो कहती हैं कृष्ण ही हमारे प्रियतम हो, हम हमारे पति हो, तो उनकी भी इच्छा पूर्ण करनी है, कैसे हो? इसलिए उस वर्ष में, एक वर्ष के अंदर में जितनी राजकुमारियां थी, कुमारियां थी, गोपियां थी, नवेली कुमारियां, किशोरियां, नवजुवतियां, गर्गाचार्य ने कि इसी साल में विवाह कर दो सबका, जो अभी तक अविवाहित हुई, तो विवाह किसके साथ में हुआ? क्योंकि कृष्ण को बाल सब बने हुए थे, इसलिए उनकी सबकी शादी वो भी हो गई। और जितने बछड़े बने थे वो कृष्ण थे, वो सबके बेटे बन गए, सबकी इच्छा पूर्ण कर दी। और जितनी सखियां थी उनके बेटे बन गए, गोपियों की उनके बेटे बन गए, सबकी इच्छा को पूर्ण किया। ये कृष्ण का अतिरिक्त तो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए एते चान सकला पुष्पुंस कृष्णस्तु भगवान। यदि राम से कहो मैं तुम्हारी बीबी बनना चाहता हूं, तुम्हारी पत्नी बनना चाहता हूं, तो राम स्वीकार करेंगे कि नहीं? अच्छा तो विवाह मत करो, हमको रखेली रख लो, रखेली जानते हैं, रखेली ही रख लो। ना ना ये भाई मैं नहीं कर सकता, नहीं मर्यादा पुरुष, बस एक सीता के। वशिष्ठ जी ने कहा राम जी ने कहा जो यज्ञ करोगे तो कर लो यज्ञ, बिना स्त्री का यज्ञ नहीं होता है भाई, तुम नहीं कर सकते। अर्धांगिनी रहेगी तो पूर्ण शरीर होगा। तो सीता जी को वनवास से बुला लाओ। राम ने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता, तो यज्ञ नहीं कर सकते। नहीं गुरु जी, ऐसा कीजिए जो यज्ञ कर सको। अच्छा जब सीता जी को नहीं ला सकते तो ऐसा करो जैसे तुम्हारे पिताजी के 360 रानियां थी, तो तुम भी एक और विवाह कर लो। नहीं, तुमसे ऐसा कौन है जो विवाह नहीं करना चाहेगी? विवाह कर, नहीं मैं विवाह नहीं कर सकता, फिर भी मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। आप कराइए, गुरु जी समर्थ हैं। मैं अच्छा एक बात करो, सोने की सीता बनाओ। सीता बनी और सोने की सीता में प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसके साथ में बैठ करके तब उनको यज्ञ करना पड़ा। ऐसे यज्ञ नहीं कर सकते हैं ना? ये राम ने एक भी स्त्री स्वीकार नहीं की, मर्यादा हानि हो जाएगी, किस लिए? धोबी कह दिया, धोबी एक बड़ा प्रमाणिक व्यक्ति कह दिया। उनको वहां पर कोई परामर्श देने वाला नहीं मिला सारी अयोध्या में। अरे भगवती सीता जी को तो क्यों छोड़ रहे हो, मैया को? अरे वशिष्ठ की भी अकल गड़बड़ हो गई, कौशल्या जी भी नहीं कर सकी। अरे तो राम बेटा तू क्या कर रहा है, सीता जी ने क्या गलती किया? यदि जबरदस्ती किसी ने किसी को छू दिया तो पवित्र हो गया, इतनी बुद्धि राम में नहीं है, क्यों ऐसा किया? यदि इतना ही है यदि छोड़ दिया तो एक और शादी कर लो। अरे अमेरिका में तो 10 बार 20 बार लेते हैं बदलते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो यहाँ का रिवाज है। तो लोग भाई इसको हमारी भारतीय सनातन धर्म वाले ऐसा मत करना, नहीं तो सब धर्म कर्म सभी नष्ट हो जाए। तो देखिए ये निष्ठा उनकी, राम कभी भी छोड़ सकते हैं। किंतु कृष्ण के पास में जो कुब्जा भी गई तो क्या किया, परम सुंदरी बना करके उसे बनाने क्या 16,100 कन्याओं को और राज कन्याओं को और राजकुमारियों को पकड़ करके नरकासुर ले गया और अपने महल में बंद रखा, जैसे 2-4 दिन के बाद ही मैं शुभ मुहूर्त देकर के शादी कर लूंगा। इसी बीच में कृष्ण पहुंच करके उसे मारा और उसको मुक्त कर दिया और कहा जी तुमको घर घर में पहुंचा दूं, जहां तुम्हारे पिताजी हैं, भाई हैं, पति हैं, पहुंचा दूं। उन्होंने कहा जी अब हमको नहीं स्वीकार करें, हमारी माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, भाई भी नहीं, पति भी नहीं स्वीकार करेंगे। अब तो आप ही के घरों में हम आपकी झाड़ू देंगे, घर में जूठे बर्तनों को मांजेंगे, आपकी रानियों की चरण दबाएंगी, हम आपके घर में दासी बन करके रहेंगे। कृष्ण का जी दासी बना करके नहीं, हम पर रानी बना करके रखेंगे। उनसे 16,000 मालों में 16,000 रानियों के साथ में शादी की, दासी नहीं किसी को बनाया, ये कृष्ण कर सकते हैं, राम भी नहीं कर सकते। नृसिंह की तो बात ही क्या है, नारायण भी उतर करके किसी के बेटे बाप नहीं बनेंगे, वो तो वहीं पर बैठे रहेंगे जम करके, नहीं आ सकते। 1,000,000,000 जो हमारे बेटे हो जाओ तो कहेंगे हम अच्छा हम दूसरे रूप में आएंगे, उस रूप में नारायण के रूप में नहीं आएंगे। इसलिए कृष्णस्तु एक लीला में कितना काम किया, गोपियों की इच्छा पूर्ण की, 7,000 दंडकारण्य निवासी थे जो राम को पति के रूप में बनाना चाहते थे, उन्होंने नहीं स्वीकार किया तो कृष्ण के चरणों में हुआ है, राम की कृपा से वो गोपी बन करके आए, उन सबको ग्रहण किया। जनकपुर में कितनी राजकुमारियां थी, उनकी इच्छा थी राम से शादी की, उन्होंने कहा भाई इस रूप में नहीं, तुम लोग गोपी बनकर के आना, मैं कृष्ण रूप में ग्रहण करूंगा उनकी इच्छा। जितने भी अवतार हैं सबकी इच्छाएं पूर्ण कहां हुई, इसलिए कृष्णस्तु, इस चीज को याद रखें, वही संपूर्ण। इसलिए उन्होंने कहा ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म की भी, चराचर विश्व का जो सृजन करने वाला जो ब्रह्म है, निराकार है, वो हमारे अंकों की ज्योति है, उस ज्योति की प्रतिष्ठा मैं हूं, मैं शाश्वत ब्रह्म, शाश्वत सुख और शांति अर्थात भक्ति और सनातन धर्म का मैं प्रतिष्ठा हूं। सनातन धर्म क्या है, हम जिस रूप में आज ले रहे हैं सनातन धर्म को, यह शरीर सनातन नहीं है। सनातन क्या चीज है, आत्मा, आत्मा के द्वारा परमात्मा की जो प्रेमा भक्ति है यही सनातन धर्म है, दूसरा कुछ नहीं, और उसकी सीढ़ियां हैं, इस चीज को समझो। इसलिए हमारा परब्रह्म है एक, हम एक ब्रह्म के उपासक उपासना करने वाले हैं, बाकी सब उनका परिकर, परिवार, कोई देवता, कोई कुछ, किंतु सभी उन्हीं से संबंधित, हम भी उन्हीं से संबंधित हैं। हम ही उनके अंश हैं, उनको भूल जाने के कारण हमारी दुर्वस्था हुई। इसलिए कृष्ण सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले परिपूर्ण ब्रह्म अपश्यत पुरुषम
पूर्णम।
इसलिए व्यास जी ने भागवत बनाने का, रचना करने का या प्रकाश करने का कारण यह है, गोपियों का जैसा प्रेम विश्व में नहीं है। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। एक सबरी का जूठा बेर भी उन्होंने खाया, किस लिए? प्रेम के द्वारा। अब बड़े बड़े साधु सन्यासी और ऋषियों को भी नहीं, उनके यहां नहीं गए, सबरी के पास में गए, ये प्रेम है। विदुरानी के घर में केले के छिलके खाए, उसके भीतर का नहीं खाया, और जब आए विदुर जी घर में, देखा जी ये तो छिलके खिला रही है, उन्होंने कहा ये छिलके खिला रही है, कृष्ण कहते मत बोलो कुछ, हमारे छिलके में यूं आनंद आ रहा है जो सप्तभामा रुक्मिणी द्वारका में जो हमको 56 प्रकार का भोग लगाती हैं, उसमें वो रस आनंद नहीं आ रहा है जो इस छिलके में आ रहा है, ये प्रेम में खा रहा हूं। उस केले के अंदर में वो चीज प्रेम नहीं है जो इसके प्रेम से मैं खा रहा हूं। कृष्ण को किस चीज की कमी है? वो प्रेम की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए कृष्ण के साथ में प्रेम हो, ऐसा कोई गुरु हो, ऐसा कोई वैष्णव हो, ऐसा कोई संत हो जो कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेमा भक्ति लगा दे, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। उनकी पूजा करने से तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, जगत प्रसन्न हो जाएगा। तस प्रणीते प्रणीतम जगत, उससे हो जाएगा। और उनको छोड़ करके एक एक को, लाख को, एक छोटे से बच्चे को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। आप कहेंगे एक छोटा सा बच्चा है, क्या चाहते हो बेटा? मुझे भोजन नहीं मिला है 5 दिन से, भोजन करा दिया, दूसरे दिन आए, क्या चाहते हो? मैं रोज रोज भोजन चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जीवन के लिए मैं भोजन की बात, प्रभु हमारे लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, अच्छा और कुछ चाहिए? हमारे घर लिए रहने के लिए घर नहीं है, घर नहीं है, अच्छा 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 घर दे देता हूँ, घर एक राजभवन दे, ठीक हो गया ना। एक सुंदर सी पत्नी चाहिए, नहीं तो कैसे संसार चलेगा, हो गया। 4 वर्ष तक लड़का नहीं हुआ, प्रभु जी हमको लड़का लड़की कोई नहीं, अच्छा लड़का सुखी हो गया। अरे भारतवर्ष का मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री, हो गया। मैं यहाँ से संतुष्ट नहीं, यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति यदि बन जाऊं, क्विंटल बया क्या, तब तो होगा, ठीक, अच्छा कर दिया। अब नहीं, मैं पृथ्वी का, आकाश का, समुद्र का, सबका मालिक बन जाऊं, अच्छा ठीक है। ब्रह्मा भी बना दिया, सृष्टि करा, तभी प्रसन्नता नहीं हो सकती है। एक जीव को संतुष्ट करना बड़ा भारी कठिन है, किंतु यदि कृष्ण को संतुष्ट कर दो तो सभी संतुष्ट अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के अंदर में, यदि ये छोटा सा ये मंत्र है। बहुत से ऋषि लोग 60,000 आए पांडवों के पास में, आए जी अभी भोजन करना है। द्रौपदी ने खा करके, और वो सूर्य का दिया हुआ वो बटलो ही थी, बटुआ, उसको उसने माज करके उलाद करके रख दिया। जब तक नहीं खाएगी तब तक लाखों आदमी आए उनको खिला सकती है, लाखों आदमी आए, और जब वो खा करके उस बर्तन को मल करके रख देगी तब नहीं होगा। तो आज उसने खा करके दोपहर के बाद में अतिथियों को भी सबको खिला पिला करके, पतियों को, और उलाद करके रख दिया। इतने में 60,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा पहुंचे, मैं बहुत भूखा हूं, हमारे शिष्य लोग भूखे हैं, अभी खिलाना है। महाराज उठे से तो देख करके, और 5 पांडव लोग डर गए, कैसे खिलाया जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा कीजिए, ये यही पर विमल कुंड है, यहाँ पर स्नान करके, आचमन करके आप लोग आ जाइए, तब तक भोजन तैयार मिलेगा। कहा तो दिया, वो चले गए ऋषि। इतने में द्रौपदी को बुलाई उन्होंने, द्रौपदी हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, तो जरा अपने प्रभु को तो बुलाओ, आज हम लोग जलेंगे, उनके अभिशाप से सभी लोग जल करके खत्म हो जाएंगे, कोई उपाय करो, उनको बुलाओ। द्रौपदी जी ने ध्यान लगाया, प्रभु मेरे तो गिरधर गोपा दूसर, अब तो आपके अतिरिक्त तो कोई है नहीं हमारी बात, अभी हमारे 5 पति हमारे मारे जाएंगे, वो लोग जल करके खत्म हो जाएंगे, आप कोई उपाय कर। इतने में मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश जी पहुंचे, सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। आप भी मुझसे दिल लगी कर रहे हैं, हमने बुलाया आपको और आप भोजन मांग रहे हैं। नहीं, मुझको पहले भूख लगी है, भोजन अब खिलाओ और पानी पिलाओ, इसके बाद में तुम जो कुछ कहो करूंगा, पहले हमको ये चाहिए। अरे प्रभु तो मैं तो उसी के लिए मर रहे हूँ, दुर्वासा जी 60,000 शिष्य लेकर के आए हैं, घर में कुछ है ही नहीं जो खिलाऊं। अरे अपनी बटलोई कला तो बटलोई में कुछ नहीं है, तू ला तो सही। अरे मैंने माज करके उलट कर रख दिया, कोई बात नहीं, लिया ले आकर के कृष्ण ने उसे देखा, भीतर में देखा तो एक साग का तिनका लगा हुआ था, साग वो भी जंगली साग, उसी को उबाल करके आज खाया था। कृष्ण ने अपने नक्शे उसके भीतर डाल करके उसे निकाला और मुख में दे करके कहा पानी तो ला। पानी लाया और पेट भर करके तृप्तोष्मी तृप्तोष्मी और एक ढेकार दिया। और आते ही जितने ऋषि अभी स्नान कर रहे थे उनका पेट एकदम तुम्बा हो गया, ढेकारने लगे, इतनी पेट भर गया जो इतनी भी जगह नहीं। उन्होंने कहा देखो हम भीम गदा लेकर के आ रहा होगा बुलाने के लिए, जल्दी से भागो, नहीं तो यदि नहीं खाएंगे उसकी रसोई नष्ट हो जाएगी और फिर बड़ा भारी गड़बड़ होगा, भागो यहां से। अम्बरीश का याद है ना, बस भागे एकदम पाताल लोग छोड़ करके, पृथ्वी को पार करके, ब्रह्म लोग पार करके चले गए। कहा जी ने कहा भीम को भेजा गया जी जाओ उनको बुला लो, वो गदा लेकर के गया बुलाने, देखा जी वहां पर तो कोई है ही नहीं है। तो कृष्ण मुस्कुराने तस्मिन तुष्टे, इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता होगी, एक की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता हो जाएगी। इसलिए कृष्ण को साधारण ग्वारिया मत समझो, ग्वारे होने हैं प्रेम के लिए, प्रेम के भिखारी बन करके आए हैं। जसोदा जी उनका कान मल रही है, कहते तू चोर है, चोटता है, झूठ बोलता है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की स्तुति से नहीं प्रसन्न होते गोपियां, तो यहाँ तक की किशोरी गोपियां, तू धूर्त है, तू लंपट है, न जाने क्या क्या कहती हैं, और कान बिछाए रहते हैं उनके पीछे पीछे चलते हैं, इनके चरण की धूली हमारे ऊपर में आ जाए मैं भी पवित्र हो जाऊं, ऐसे कृष्ण है। उतना उनको जान से मारने के लिए आई, उसको माता की गति दे दी, ऐसा दयालु कौन होगा। ओ बकीयम स्थान कालकूटम जिघांसया पायत अप्यसाद्धि लेभे गतिं ततो धातृचितां ततो कंवा दयालुं शरणं प्रपद्ये, ऐसा कौन दयालु। इसलिए आप लोग ये भारतीय संस्कृति की ये परम सत्य चीजें हैं, ऐसे कृष्ण राधा जी को पाकर, उन्हीं में राम सीता जी को देखिए, उनमें सबको देखिए, सारे विश्व को देखिए, अपने को भी देखिए, तीर्ण गुल्म लता सबको देखिए, यही हमारा आज यहीं तक रहे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः, आरती कराइए तो जी। करो बोलो, अभी तो इसका भी कीर्तन एक सुनना है।
हम लोग का बड़ा सौभाग्य था कि कुछ दिन हम लोग का हम लोग हर शनिवार को इकट्ठा होकर एवरी सैटरडे इवनिंग वी गेट टुगेदर।
पैसे के लिए ये पश्चिम देशों में नहीं आया, पैसा तुम लोग घर में छोड़ करके आए हैं, साधु संन्यासी हैं, हम आते जाते हैं जाते हैं कुछ, बस इसी में जो कुछ खर्चा, नहीं तो हमको पैसे की जरूरत नहीं। हम तो लोगों को, लोगों का पवित्र हृदय लेकर के उसमें मंदिर बनाना चाहते हैं, हृदय में ही जो स्थायी मंदिर हो। तभी ये दे रहे हैं, आने जाने में तो कुछ खर्चा ही है या और भी कुछ है, किंतु हमको इस सब की जरूरत नहीं है, तभी मैं ग्रहण करता हूँ, बड़े प्रेम से दे रहे हैं।
महाराज जी के ट्रेवलिंग और बुक्स कई महाराज जी ने लिखी हैं, इसे भी ऐसा रखेंगे जो उनके प्रोग्राम में दीक्षा करके होगी, वो हम लोग वहाँ पे वृंदावन में दुर्वासा मुनि की महाराज कथा सुना रहे थे,
राधा कृष्ण के चरणों में इन लोगों की एकांतिक भक्ति हो।
और पाठक जी को उनकी बड़ी इच्छा थी, पाठक जी की पिछले साल से उनकी इच्छा पूर्ण को याद है,
उनकी वो और उनकी पत्नी ये गृहस्थ भेष में भी ये सचमुच में संत लोग हैं, उनको संत की दृष्टि से मैं आदर करता हूँ, और उनको भी मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि राधा कृष्ण के चरणों में एकांतिक उनको प्रीति और भक्ति हो।